इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया अयान के सामने डर और अनिश्चितता से भरी हुई है। अयान उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और वे साथ रहने की बात करते हैं। इस अध्याय में ज़ोया और अयान एक दूसरे से बात करते हैं और शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं, लेकिन ज़ोया अयान पर शर्तें रखती है। अयान सभी शर्तों को मानने के लिए सहमत हो जाता है। मानवी को वेदिका मेहरा शॉपिंग के लिए चलने को कहती हैं। नाउ नेक्स्ट। मानवी ने पैकेट चुपचाप पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर से एक सुंदर साड़ी और उसके साथ एक रेडीमेड ब्लाउज निकला। ब्लाउज के पीछे डोरियां लगी हुई थीं ताकि उसे आसानी से एडजस्ट किया जा सके। थोड़ी ही देर में मानवी चुपचाप साड़ी पहनकर सामने आ खड़ी हुई। थोड़ा सा मेकअप भी कर लो, वेदिका ने प्यार से कहा। ना चाहते हुए भी मानवी मेकअप करने लगी थी। वेद चाहे अवनी के साथ खेल रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान मानवी पर था। अगर मैं कहता तो कभी नहीं मानती, उसने अपने मन में कहा। अच्छा है, और मॉम की बात तो इसे माननी पड़ेगी। जब मानवी पूरी तरह तैयार होकर आई, वेदिका ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। मानवी की मांग में सिंदूर नहीं था। वेद, इधर आओ, वेदिका ने आवाज दी। वेदिका के हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी। मुझे पता था तुम्हारे पास सिंदूर नहीं होगा। वेद, मानवी की मांग में सिंदूर भरो, वेदिका ने अपने बेटे वेद से कहा। वेद उठकर उनके पास आए और मानवी की मांग में हल्का सा सिंदूर लगा दिया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मानवी देखती रही। इसी बीच दरवाज़ा खुला। नौकर अंदर आया और बोला, हम लोग आपके लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। वो सब कुछ टेबल पर सजाकर चला गया। वेद ने पूछा, डैड क्यों नहीं आए, वो नीचे चले गए क्या? वेदिका मुस्कुराई, कह रहे थे कि आज अवनी के साथ ही ब्रेकफास्ट करना है, आते ही होंगे। वेद मोबाइल निकाल ही रहा था कि तभी दरवाज़ा फिर से खुला। अंदर बलवंत मेहरा दाखिल हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और सीधे सोफे की ओर बढ़ गए। उन्होंने गोद में बैठी हुई अवनी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और मानवी से बोले, चलो बेटा, ये तुम्हारी कॉपी है। मानवी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बलवंत ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये शेयर्स हैं जो तुम्हारे और अवनी के नाम ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो रहे हैं अवनी के लिए। अभी थोड़े और गिफ्ट भी आने वाले हैं। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम चाहो तो इसे किसी भी वकील से चेक करवा सकती हो। मानवी ने चुपचाप फाइल पकड़ ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के दौरान वेद और बाकी सब आपस में हंसते बतियाते रहे। तीनों अवनी पर इतना प्यार लुटा रहे थे कि मानवी को हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी सबकी इतनी लाडली कैसे बन गई। मानवी ज्यादा कुछ नहीं बोली, उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, मगर वो अपनी बेटी को खुश देखकर खुश थी। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, बलवंत मेहरा बोले, चलो अब बाजार चलते हैं, आज मेरी प्रिंसेस को बहुत सी शॉपिंग करनी है, उन्होंने अवनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। सब लोग एक ही गाड़ी में निकल पड़े। सबसे पहले वे बच्चों की शॉप पर गए। वहां अवनी के लिए फ्रॉक्स और छोटे बच्चों का ढेर सारा सामान खरीदा गया। अवनी जमीन पर एक बार भी नहीं उतरी। कभी वो वेद की गोद में जाती, कभी वेदिका की, और कभी बलवंत मेहरा की। मानवी को उसे गोद में लेने का एक भी मौका नहीं मिला। अक्सर पहले जब अवनी मानवी के साथ बाहर जाती थी तो अवनी उसकी उंगली पकड़ लेती और उसके साथ चल पड़ती। मानवी के दिल में अजीब सा सुकून भी था और डर भी। जो कुछ हो रहा था उससे वो मन से खुश थी, मगर उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो उसे डर था कि जल्द ही टूट जाएगा। फिर बलवंत मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारी शॉपिंग करते हैं। इसके बाद वे मानवी को लेकर एक दुकान में गए। वेदिका ने वहां से कुछ साड़ियां और गहने चुनकर मानवी को दिए। बलवंत ने हंसते हुए टोका, अब जरा बच्चों को भी उनकी पसंद की चीजें चुनने दो। वेदिका को जो जो साड़ियां और गहने पसंद आए, मानवी ने बिना कुछ कहे चुपचाप ले लिए। थोड़ी देर बाद बलवंत मेहरा बोले, ऐसा करो बच्चों, अब हम होटल चलते हैं, बहुत थक गए हैं, दोपहर हो चुकी है, तुम दोनों आराम से शॉपिंग पूरी कर लो और बाद में आ जाना। फिर उन्होंने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, चलो कि ना बेटा हमारे साथ। अवनी को जैसे उनकी बात का इंतजार था, वो खिलखिलाकर हाँ में सिर हिलाने लगी। जिस तरह से सब उस पर प्यार लुटा रहे थे, उसे सचमुच लग रहा था कि ये पूरा परिवार उसी का है। मानवी ने झिझकते हुए कहा, नहीं, बहुत हो गया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बलवंत सिंह ने मुस्कुराकर समझाया, रुक जाओ ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग और कर लो, हम लोग अवनी को लेकर चलते हैं। और हाँ बेटा, आइसक्रीम खाऊंगी, अवनी उछल कर बोली, हाँ खाऊंगी। अब मॉल में सिर्फ वही दोनों रह गए थे। वेद मानवी को साथ लेकर एक वेस्टर्न आउटफिट की शॉप पर पहुंचा। सेल्स गर्ल अलग अलग ड्रेसेस दिखा रही थी। जैसे ही मानवी ने एक ड्रेस उठाकर देखा, सेल्स गर्ल मुस्कुराई, मैम आप पर तो ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी, आपकी फिगर और लुक्स पर हर वेस्टर्न आउटफिट चढ़ जाएगा। मानवी ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वेद का फोन बज उठा। स्क्रीन पर अयान का नाम चमक रहा था। अब तक जितने भी कॉल आ रहे थे, वेद ने कोई नहीं उठाया था, लेकिन इस बार उसने फोन रिसीव कर लिया। कहाँ हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अयान की आवाज में जल्दी थी। वेद ने मजाक में कहा, तुम्हारी आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे किसी भाभी ने आखिरकार मान ही लिया हो। अयान ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ मान गई है, मगर थोड़ी सी शर्तों पर, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है। वेद हंस पड़ा, अब क्या तुम सबके कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ठेका ले चुके हो?
चलो गौतम का नंबर भेजता हूँ, उसी से बात कर लो, वो यही है, मैं उसे कह दूंगा। फिर हंसते हुए बोला, बाकी बातें बाद में, अभी तो मैं मैडम के साथ हूँ। ये सुनते ही मानवी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। वेद ने उसकी नजरें पकड़ ली और दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नहीं, इससे पहले कि वो मुकर जाए, मुझे जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तुम आ जाओ, अयान ने वेद से कहा। मगर काम तो गौतम ही करेगा ना, वो सब संभाल लेगा, वेद ने समझाया। हाँ, अब तुम्हारा काम बन गया ना, तो तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं, अयान ने मजाक में ताना मारते हुए कहा। ठीक है, आ रहा हूँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, चलो मानवी चलते हैं, कुछ कपड़े तो ले ही लेते हैं। मानवी कोई ड्रेस ट्राई करने को तैयार नहीं थी, वेद ने अंदाज जैसी कुछ ड्रेस ले ली और दोनों वहां से निकल गए। जब तक वो लौटे दोपहर हो चुकी थी। बाहर लॉन में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन होटल के सामने वाले हिस्से में गेस्ट बैठे थे। वहीं एक कोने में म्यूजिक चल रहा था और ब्रिजेश मेहरा, मौली मेहरा, शेखावत फैमिली के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सुधीर भी वहीं मौजूद था, रुचिका भी वहीं थी। बड़ों का ध्यान बातों में था, मगर रुचिका और सुधीर दोनों बैठे बोर हो रहे थे। वो दोनों जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुए, सुधीर की नजर उन पर पड़ी। फिर वेद ने भी सुधीर की ओर देखा, रुचिका का ध्यान भी उनकी तरफ गया। सुधीर और रुचिका दोनों में आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। सुधीर तुरंत खड़ा हो गया। रुचिका तुम भी चलोगी? चलो वेद भाई और भाभी के पास चलते हैं। असल में सुधीर जानता था कि अकेले उठना थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए उसने रुचिका को भी साथ चलने के लिए कहा। रुचिका भी वैसे ही वहां से उठना चाहती थी। दोनों साथ उठे और वेद मानवी की तरफ जाने लगे। फैमिली वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, दोनों के परिवार खुश थे कि बच्चों में निरता होने लगी है। तभी
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।